हरे कृष्णा। तो आप सभी का हमारे रविवारी सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे जैसे अभी ये रविवार का प्रोग्राम जो है वो हर हफ्ते होता है ऐसे रविवार के दिन। तो यहाँ पे 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन होता है, 11 से 12 बजे यहाँ पे कथा होती है, और 12 बजे यहाँ पे वृंदावन बिहारी मंदिर में महाआरती होती है 12 से 12:30। और 12:30 बजे जो है सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है हमारे ललिता भवन हॉल में। तो उस प्रोग्राम जो अपना जब कथा होगी तो उसके दरम्यान आपको कूपन भी दिया जाएगा प्रसाद का, तो प्रसाद का कूपन आप पा सकते हैं। तो हमारा आज का विषय है रविवार जो कथा है उसकी, क्या भक्ति इस युग में प्रैक्टिकल है? तो ये हम आज जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो कथाकार है श्रीमान अनंत राघव प्रभु जी, तो अनंत राघव प्रभु जी जो है इन्होंने 2009 में हमारा VTA जो वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी जो है इसको ज्वाइन किया था, उसके बाद VTA उसके बाद BT करके यहाँ पे 2011 में वो आए थे, और 2011 से फुल टाइम यहाँ पे जो गोवर्धन इको विलेज देख रहे हम, तो इसके निर्माण में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और प्रभु जी जो है अभी उनकी हमारे जो किचन है तो किचन में सेवा करते हैं, हर दिन 400-500 भक्तों का प्रसाद वो बनाते हैं, और बहुत सारे बाकी जगह पे सुंदर प्रोग्राम भी करते हैं, भक्तों को प्रेरणा देते हैं भक्ति में, और सुंदर कीर्तन भी करते हैं। तो आज हम उनसे ये जो विषय है इसके बारे में सुनेंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव। बोलिए जोर से। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन शो यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन चारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है, जो यहाँ के गोवर्धनी को विलेज के रहवासी और जो अतिथि जो आज यहाँ पर आए हैं, सभी का स्वागत है यहाँ पर। तो आज का हमारा शीर्षक है, क्या भक्ति इस युग में प्रैक्टिकल है? तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रैक्टिकलिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो पहले तो हम भक्ति क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम कुछ भी जीवन में करते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। आप में से कितने लोग बिजनेस करते हैं? तो जो व्यक्ति बिजनेस करता है उसका उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा। कितने लोग दुकान खोलते बोलते ले लो फ्री में लेके जाओ, करते? तो उद्देश्य क्या होता है? क्या प्रॉफिट, थोड़ा मुनाफा हो, कुछ अच्छा धंधा हो, राइट? तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है जीवन में। तो उसी प्रकार से भक्ति का क्या उद्देश्य है? क्या भक्ति करनी चाहिए, क्या भक्ति नहीं करनी चाहिए? क्या मत है आप लोग का? आप लोग से विनंती है, आप लोग कृपा करके भाग लीजिए। मतलब लेक्चर से मत भाग जाइए, लेक्चर में भाग लीजिए, मतलब पार्टिसिपेट कीजिए। तो हाथ उठाइए और उत्तर दीजिए। कितने लोग को लगता है भक्ति करनी चाहिए? क्या बात है, आज इस्कॉन मंदिर में आए हो इसके लिए ऐसा बोल रहे हो कि हाँ, मतलब शुद्ध भक्त लोग आ जाए सब। तो बताइए क्यों करनी चाहिए, क्या उसके पीछे क्या मोटिवेशन है, उसके पीछे आपका क्या? जैसे कोई चीज करते तो उसके पीछे एक स्वार्थ होता है, या एक क्या बोलते हैं उसको, एक कुछ चीज मिलती है उसके वजह से लोग करते हैं। जैसे एक छोटा बालक होता है, उसकी माता या उसके पिता बोलते हैं कि देखो अच्छी पढ़ाई करना, अगर एग्जाम में अच्छे नंबर मिले तो तुमको मैं साइकिल लेके दूंगी या मोबाइल लेके दूंगी या एक्स वाई जेड कुछ दूंगी। तो एक उसके पीछे एक मोटिवेशन होता है। तो उसी प्रकार से भक्ति के पीछे क्या मोटिवेशन है बताइए माता जी। कर्म अच्छे करेंगे तो भगवान के समीप रहेंगे। धन्यवाद। और कुछ? इंटरनल पीस, अंदरूनी शांति। और कोई? जिनका मौन व्रत हो वो भी हाथ तोड़ दे। बोलिए माता जी। ईश्वर प्राप्ति। और कुछ? हाँ माता जी बोलिए। प्रभु का दर्शन लेना है, प्रभु के पास जाना है। और कुछ? कौन बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा है? अल्टीमेट हैप्पीनेस, शाश्वत आनंद। और कुछ? जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भक्ति करना। बैठो बैठो बैठो। भक्ति, ऐसा कौन बोलता है? आपने बोला ना, तो इसके लिए भक्ति करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? ठीक है। तो कभी भी जीवन में हमको याद रखना चाहिए व्हाई वी डू व्हाट वी डू। हम जीवन में कुछ भी करते हैं उसके पीछे हम कारण पता होना चाहिए। समझ रहे? ये बहुत जरूरी है। जैसे मुझको याद है एक बार एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे था, और आप लोग ने बंबई की रेलवे ट्रेन तो देखी होगी कितनी भीड़ होती है। तो जैसे ही ट्रेन आई वो ट्रेन जा रही थी विरार, और हजारों की संख्या में लोग उसमें थे, और इतने सारे लोग आ गए और ये व्यक्ति जो था वो प्लेटफॉर्म पे बैठा था। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोग उतर गए और उससे दुगनी मात्रा में लोग चढ़ गए। तो जैसे पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा हो जाता ना कभी कभी, पूरा का प्लेटफॉर्म खाली हो जाए, लोग ट्रेन में चढ़ गए, तो ये व्यक्ति जो सीट पे बैठा था वो विचार करने लगा, अरे सब लोग चढ़ गए मैं क्या कर रहा हूं। तो वो भी चढ़ गया। तो जैसे अंदर चढ़ गया तो आपको मालूम है लोग लटक रहे थे, तो उसका एक अलग टेक्निक है, धक्का मार मार के वो लोग जगह बनाते हैं। मैं बोलता हूं उसको फ्री मसाज। बंबई के लोकल ट्रेन में आपको फ्री मसाज मिल जाता है। तो व्यक्ति अंदर कैसे तो चढ़ गया, तो उसके पीछे वालों ने उसको धक्का दे दे के अंदर लेके गए। और फिर कुछ समय के बाद दूसरा स्टेशन आया, तो जैसे थोड़ा ट्रेन चलने लगते तो लोग प्रश्न पूछते हैं, उतरोगे क्या? तो व्यक्ति ने बोला नहीं, मालूम नहीं। नहीं भी नहीं बोला, क्या बोला? मालूम नहीं। तो जैसे मालूम नहीं बोला तो लोग बोले ये आदमी ठीक तो है, एक तो ट्रेन में चढ़ा है, या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, मालूम नहीं क्या है। तो किसी ने उसको पूछा मतलब क्या बोल रहे थे कि सब लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे, मैंने सोचा मैं भी चढ़ लेता हूं, उसको जाना कहीं नहीं था। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो दुनिया कर रही है हम भी वो करने लग जाते हैं, जो दुनिया कर रही है हमको भी लगता है कि ये करना चाहिए। तो वास्तविक में हमको जानना चाहिए कि वास्तविक में हम कोई चीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या स्वार्थ है, क्या मोटिवेशन है। जैसे आप में से कितने लोग जॉब करते हैं, क्या उद्देश्य है जॉब करने का प्रभु जी? हाँ, उससे वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो उससे उद्देश्य क्या है? कुछ धनराशि मिलेगी ताकि हम बाकी खर्च कर सकते हैं, घर का ये कर सकते हैं। तो ये है एक मोटिवेशन, चलो इससे कुछ तो मुझको सीखने मिलेगा, कुछ तो मेरे काम आएगा, तो काम करने का एक मोटिवेशन है। उसी प्रकार से खाने का मोटिवेशन, क्यों खाते हम लोग? आप तो ऐसे बात कर रहे, कोई खाता ही नहीं इधर। हाँ, जिंदा रहने के लिए, नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तो शरीर को एक साथ रखने के लिए, आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए हमको आहार लेना पड़ता है। हा? तो उसका भी मोटिव है, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, समझ रहे? तो ये भी है। तो मोटिवेशन इसमें क्या है? सस्टेनेंस, सर्वाइवल। चलो खाना टाइम टू टाइम खाएंगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक खटते हैं, सैटरडे संडे को भी काम करते हैं, फिर पार्ट टाइम जॉब करते हैं, इतना कुछ करते हैं, किसी ने पूछा इतना क्यों कर रहे हो, क्या बोलते हैं, मेरा परिवार, मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरे पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, तो ये उनका मोटिवेशन है। फिर ये कौन है यहां पर, हमारे देश के बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर, इनका मोटिवेशन क्या था, इन्होंने हमारे लिए कितना कष्ट किया, जेल में गए, कितना उन्होंने डंडा खाया, कितना उन्होंने सहन किया, क्यों किया, क्या मोटिवेशन था, आजादी, देश के लिए, बराबर है। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, उसके पीछे एक मोटिव होता है, हाँ। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको, उसका दिमाग गर्म हो गया तो ठंडा करने फ्रिज में बैठा है। तो जैसे किसी माता ने कहा या किसी प्रभु जी ने कहा, हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं, अंदरूनी शांति के लिए, मन की शांति के लिए, हाँ। कितने लोग मन की शांति चाहते हैं, कितने लोग को मिल गई है, किसी को नहीं मिली, अच्छा एक ही माता जी है उनको मिली। तो हर व्यक्ति जो कार्य करता है उसके पीछे उद्देश्य है, एक उद्देश्य ये भी है कि भाई शांति मिले, कोई भी चीज करो उसमें सुख और शांति मिले। लेकिन आप बोलेंगे यार ये क्या है, हर व्यक्ति अपना ही स्वार्थ देख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी वो कर रहा है उससे उसको आनंद की अनुभूति हो रही है, बराबर है। बिना आनंद की अनुभूति कोई कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति देश की भी सेवा कर रहा है लेकिन उसको उसमें भी एक आनंद आ रहा है, बराबर है। कोई व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक काम करेगा लेकिन उसको उसमें भी आनंद आ रहा है, क्यों, इससे मेरे पिताजी खुश हो जाएंगे, इससे मेरे गुरु खुश हो जाएंगे, बराबर है। तो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो सुख और शांति की प्राप्ति कर रहे हैं लोग। लेकिन प्रश्न ये है, क्या सुख और शांति के पीछे भागना अच्छी बात है कि बुरी बात है, हाँ? अच्छी बात है, क्योंकि यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा जीव जो है वो आनंदमयोभ्यासात है, उस जीव का स्वाभाविक नेचर क्या है, आनंद की तलाश करना। इसके लिए जो आत्मा है उसकी, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी चेतना क्या है, सत चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान से भरा, और आनंद मतलब आनंद। तो भगवान कृष्ण या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है वो सच्चिदानंद विग्रह है, और हम जो है वो हम क्या है, हम उस सच्चिदानंद विग्रह के एक अंश है, इसके लिए हम में भी वो सच्चित आनंद के गुण है, ठीक है। तो भक्ति क्या है, भक्ति में भी ये आनंद प्राप्त करने का मार्ग है। इसके लिए यहां पे आप इस्कॉन मंदिर में आओगे, किसी व्यक्ति को, किसी प्रभु जी को आप देखे यार एकदम मायूस लग रहे हैं, एकदम दुखी लग रहे हैं, कभी कभार टेंशन में होंगे वो, उसका मतलब नहीं कि वो दुखी होंगे, क्योंकि एक भक्त के जीवन में भी भले वो सब चीज नहीं कर रहा, बाहर की चीजों को ना बोल रहा है वो, लेकिन फिर भी वो आनंद में है, क्योंकि वो भगवान के संपर्क में है। तो अलग अलग पुस्तकों में आपने पढ़ा रहेगा, 5 लेवल का हैप्पीनेस होता है। पहला सबसे लो लेवल का होता है अन्नमय कोश, आपने सुना है पंचकोश के बारे में, सुना है, सबसे लोअर आनंद होता है अन्नमय कोश, जिसके जीवन में केवल उसको खाना मिल गया बस, और कुछ नहीं थी। जैसे जानवर होते हैं ना, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या सोचते हैं, आज खाना किधर मिलेगा, तो एक बार खाना मिल गया बस, तो और कुछ सोचते नहीं वो। उनकी गाड़ी केवल ये 4 स्टेशन रुकती है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस। तो आनंदमय, अन्नमय, हाँ, खाना, आनंद करना। दूसरा है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश मतलब अपने शरीर के ऊपर फोकस रहता है उनको, अच्छा ये शरीर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अच्छे से अच्छे शरीर का ध्यान रखना है, हाँ। फिर मनमय, अपने मन को कैसे काबू में करना है, मन मन को कैसे सेवा में लगाना है, किस प्रकार से मन को एंगेज रखना है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको ज्यादा जिज्ञासा होती है ज्ञान जागृत करने के लिए, ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए था। अभी ये प्रोजेक्टर चल रहा है, हम सब लोग स्क्रीन देख रहे हैं, लेकिन जो विज्ञानमय कोश में रहता है वो देखता है ये चलता कैसे है, इसमें क्या लगाया, क्या है, क्या इसका रीजन है, लाइट पे चलता है, अरे बैटरी पे भी चल सकता है क्या। तो ये है विज्ञानमय कोश, वो सोचता है, उसके जीवन में जिसको कुछ मिल रहा है उससे वह संतुष्ट नहीं है, वो कैसे मिल रहा है, कैसे, उसके पीछे क्या है। जैसे जो आनंदमय कोश वाला आदमी होगा उसको एक प्लेट में प्रसाद मिल गया तो प्रसाद खा के सो जाएगा, लेकिन विज्ञानमय कोश वाला क्या सोचेगा, अरे आज राइस बनाया वो भी फ्राइड राइस, अरे इसमें कौन सी सब्जी रहेगी, इसमें क्या मसाला डाला रहेगा, अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है, अच्छा दाल, अच्छा ये टमाटर और गरम मसाले का पंच अच्छा है। तो इस प्रकार से वो डिटेल में जाता है, वो केवल बाहरी रूप से नहीं जलता, अंदरी रूप में जाता है। और उससे आगे वाला जो है वो है आनंदमय कोश, जो एक आत्मा के स्तर का ये है आनंद, आत्मा के स्तर का आनंद। जैसे हमेशा मैं बताता हूं, गीता कोर्स में हम लोग कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कितने लोगों ने सुना ये? तो जिस प्रकार से गाड़ी और एक ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया जाता है, आपके पास करोड़ों की गाड़ी हो, आपके पास लैम्बोर्गिनी हो या रॉल्स रॉय हो, जो करोड़ों की गाड़ी हो, लेकिन उसके अंदर अगर ड्राइवर ही ना हो तो क्या गाड़ी आगे जाएगी? आप बोलोगे क्या प्रभु जी, आजकल टेस्ला आ रहा है, बिना ड्राइवर का गाड़ी है, लेकिन वो टेस्ला चलने के लिए भी कोई बटन तो दबाने वाला चाहिए ना, बिना बटन का थोड़ी चलेगा। तो कोई ना कोई तो व्यक्ति होना चाहिए जो चालू करे। उसी प्रकार से जो शरीर है वो एक गाड़ी के समान है, बहुत ही कीमती मूल्यवान गाड़ी है, और आत्मा एक ड्राइवर के समान है। वो गाड़ी को कहाँ लेके जाना है, कौन से डायरेक्शन पे लेके जाना है, कितनी दूर लेके जाना है, वो सब उसके हाथ में है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, एक व्यक्ति था, बचपन से उसकी इच्छा थी कि लॉटरी का टिकट ले और लॉटरी जीते। तो एक बार उसको लॉटरी टिकट लग गई और लॉटरी में उसको लगी फरारी गाड़ी, जो एक स्पोर्ट्स कार है, बहुत महंगी गाड़ी आती है। तो जैसे उसको गाड़ी लगी तो उसने सोचा बहुत अच्छा गाड़ी है। तो दूसरे दिन उसने क्या किया, क्योंकि वो किसान था तो सीधा वो खेत में लेके गया फरारी को। उसको लगा अभी ट्रैक्टर भी वही काम करेगा, ये भी वही काम करेगा, क्योंकि उसके भी चार पहिए, इसके भी चार पहिए, ट्रैक्टर भी लाल कलर का, फरारी भी लाल कलर की। लेकिन क्या फरारी खेती कर पाएगा, वो कीचड़ में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बनाने वाले व्यक्ति है उसने फरारी को फास्ट स्पीड का गाड़ी बनाया है, जो 200 के स्पीड पे चल सकती है, लेकिन ट्रैक्टर है भले 20 के स्पीड पे चलेगी लेकिन खेत में चलेगी। तो भले इतना व्यक्ति के पास इतनी महंगी गाड़ी हो, लेकिन वो इतनी महंगी गाड़ी को अगर खेती में यूज करेगा तो क्या उसका फायदा उठा पाएगा वो? नहीं। तो उसी प्रकार से हमारा गाड़ी जो है वो एक शरीर है और हम आत्मा है। तो हमको वास्तविक में सही चीजों के लिए अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो ही उसका फायदा है, लेकिन हम उसको दूसरी चीजों के लिए यूटिलाइज करेंगे तो उसका फायदा नहीं है। तो उसी प्रकार से आत्मा का खुराक अलग है और शरीर का खुराक अलग है। जैसे आप गाड़ी चला के आज यहां पर प्रोग्राम में आए, मंदिर में आए, तो सोचिए रस्ते में आपने पेट्रोल भरा होगा या डीजल भरा होगा या गैस भरा होगा, लेकिन रस्ते में आपको भूख लगी तो आपने पेट्रोल वाले को बोला कि थोड़ा आधा लीटर मेरे को भी दे दे, क्या आप वो पेट्रोल पिएंगे, क्या आप वो डीजल पिएंगे? नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझको भूख लगी तो मुझको वड़ा पाव खाना है, समोसा खाना है, दाल राइस सब्जी चपाती खानी है, तो आप रस्ते में किसी ढाबे पे उतर के खाएंगे, पेट्रोल पंप पे नहीं खाएंगे, बराबर है? तो उसी प्रकार से ये पांच कोश या पांच लेवल है, ये पांच लेवल का अलग अलग स्तर पे आनंद प्राप्त होता है। तो अभी आनंद की तो बात कर ली, अभी बात करते हैं भक्ति क्या करता है। तो भक्ति ये सभी चीज को सिंक्रोनाइज करता है, आपके शरीर को, आपके इमोशन को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को और आपकी आत्मा को, ये सब को एंगेज करता है और वो एंगेज करने के बाद वो भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे एक प्रसिद्ध राजा थे, उनका नाम था अम्बरीश महाराज। वो कहते हैं सवे मन कृष्ण पादारविंदयो, वो कहते हैं कि हमें हमें हमारे सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। जो चरण है पैरों को मंदिर में आने के लिए यूज करना चाहिए, हाथ से भगवान की सेवा करने के लिए यूज करना चाहिए, जो जीवा है उससे भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन करने को यूज करना चाहिए, जो कान है उससे हमको हरि कथा सुनने का कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से हर चीज, जैसे मन है, बुद्धि है, आत्मा है, ये सब को हम भगवान की सेवा में जब लगाते हैं तो उसे भक्ति कहा जाता है। भक्ति कब होती है? जब उसमें भगवान हो। जब तक भगवान ही नहीं तो भक्ति कैसे होगी? भक्त है इसके लिए भगवान है और भगवान है इसके लिए भक्ति है। वो भक्ति एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस क्या करता है? भक्ति, भगवान और भक्त को मिलाता है, वो है भक्ति। तो अजी आज हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या इस युग में भक्ति सच में प्रैक्टिकल है? क्या इस युग में भक्ति कर सकते हैं? बाय द वे, कौन सा युग चल रहा है कोई बताएगा? सतयुग? हाँ, पक्का? कोई तो बोल रहा था सतयुग शुरू हो गया, नहीं? कितने युग होते हैं कौन बताएगा? हाथ उठाइए। यस माता जी बोलिए। बोलिए हरिबो। तो ये कौन सा युग है? पक्का? अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। तो आप विश्वास कर सकते हैं कि ये सत्ययुग है, कलयुग है या त्रेता युग है, लेकिन वास्तविक में क्या है? कलयुग है। कलयुग को ऐसा माना जाता है कि सबसे निम्न श्रेणी का ये युग है और इस युग को कहा जाता है द ओशन ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, जहां पे हर क्षण लड़ाई, झगड़ा, तकलीफ, प्रॉब्लम है। और इसका ज्वलंत उदाहरण है बंबई की लोकल ट्रेन। आप बोलेंगे प्रभु जी आप ट्रेन का बहुत एग्जाम्पल दे रहे थे, क्या करें, बहुत बार गया हूं ट्रेन में। मुझको याद है एक बार ट्रेन में जा रहा था, तो आपको मालूम है ट्रेन में 3 सीट होती है और एक आधी सीट होती है, जिसको हम 3.5 बोलते हैं, जिसमें वो आधा ही बैठता है। तो ट्रेन जब भी वो 3.5 सीट भर जाती है तो फिर लोग खड़े रहते हैं बीच में। तो एक बार सुबह सुबह रश का टाइम था, लोग बैठे थे और फिर अचानक कुछ लोग आए, वो लोग खड़े रहने लगे। तो अभी एक आदमी विंडो सीट पे है, दूसरा उसके बगल वाली सीट पे, तीसरा और फिर 3.5। तो अभी विंडो सीट वाला आदमी उधर बैठा है, उसके पास ही एक आदमी ऐसा खड़ा है, वो चाव लगा के खड़ा है कि ये जब भी उठेगा तभी मैं वहां पे विंडो सीट पे बैठ जाऊंगा। तभी बेचारा चढ़ा था विरार स्टेशन पे, विरार से आ गया बोरीवली, और बोरीवली में ये आदमी उठा। तो जैसे ही उठा वो दूसरा वाला आदमी वो बैठ गया। तो अभी ये आदमी गुस्सा हो गया कि अरे इतने टाइम से मैं खड़ा हूं, और उसको जाना था अंधेरी जो केवल 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन अभी उसका ईगो हर्ट हो गया कि इसने क्या किया, इसने मेरी सीट ली, नाम नहीं लिखा था उस पे, लेकिन उसको लगा कि मैं इतने समय से उधर खड़ा था तो ये तो सीट मेरी। तभी वो दूसरा आदमी बोला मैं तो खिसक गया। तो बोला नहीं 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 ये सीट मेरी है। तो बोला आपकी सीट नहीं है। तो बोला नहीं नहीं ये मेरी है। तो फिर लोकल ट्रेन का एक अच्छा उसने डायलॉग बोला, तुमको जो करना है कर ले, नहीं दूंगा। तो फिर उसका गुस्सा आ गया, उसको गुस्सा आ गया, फिर वो अपने माँ बाप, पिताजी, दादाजी सबको याद करने लगे, सब गाली देने लगे इसको उसको। फिर बाद में और गुस्सा आया। फिर बाद में उसने एक ब्रह्मास्त्र वाला स्टेटमेंट बोला, तुम क्या लोकल ट्रेन में पहली बार आए हो क्या? अभी मालूम नहीं ये ट्रेन में ऐसा क्यों बोलते हैं। तो वो आदमी ने बोला कि मैं 25 साल से इसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूं। मतलब ऐसा बोल रहा था जैसे उसको परमवीर चक्र मिला हो। बोल रहा 25 साल से मैं इसी ट्रेन में जा रहा हूं, तुम पहली बार आयो? नहीं नहीं तुम पहली बार आयो। फिर बोलता है तुम ज्यादा मत बोलो तुमको मारूंगा। तो बोले तू क्या मारेगा? मैं मारूंगा। फिर दोनों का और गुस्सा हो रहा है। तभी बाकी जो लोग हैं दर्शकों को भी मजा आ रहा था, लेकिन मजा आने के बाद बोर हो रहा था क्योंकि लोग एक ही डायलॉग बोल रहे हैं, तू क्या करेगा तू क्या करेगा। तो फिर दोनों ने सब लोग ने बोला अरे तुम लोग उतरो यार बहुत हो गया। तो फिर अंधेरी में वो लोग कैसे तो उतर गए। अभी अंधेरी में उतर गए, उतर तो गए लेकिन अभी अंधेरी में मारने लगे एक दूसरे को। एक ने थप्पड़ मारा, एक ने मुक्का मारा, एक ने लात मारा, एक ने ये मारा, तो जोरदार चल रहा है उनका और बाकी लोग भी सब मनोरंजन देख रहे हैं। और फिर ट्रेन चली गई। ट्रेन तो रुकने वाली नहीं है क्योंकि ट्रेन तो अगले स्टेशन पे चली जाएगी। तो अभी प्रश्न ये है कि वो लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं? ट्रेन की सीट के लिए जो ट्रेन के साथ चली गई। अभी जाना था उनको अंधेरी या बांद्रा, या तो जाएंगे हॉस्पिटल या तो जाएंगे पुलिस स्टेशन। तो बोलने का तात्पर्य क्या है? बोलने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों को लेके इतना आसक्त हो जाते हैं और हम अपना जो ईगो है वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा ही करना, ये मेरा है, ये मेरे लिए है, और उसकी वजह से जो हमको तकलीफ होती है और उसका कभी कभी इतना बुरा परिणाम हो सकता है। सोचिए अगर मारा मारी में किसी को ज्यादा लग गया और जीवन भर वो हैंडीकैप हो गया या कुछ हो गया। तो कभी कभी लोग आगे का नहीं सोचते, कभी कभी वो तुरंत इमीडिएट इफेक्ट का सोचते हैं। तो मैं यहां पर वही बता रहा था। तो अगर अभी हम प्रैक्टिकलिटी ऑफ भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप सब लोग ने स्टार्टिंग में बताया कि हम सबको भक्ति करनी चाहिए, कितने लोग ने हाथ उठाया था वापस उठाइए, कितने लोग बोलते भक्ति करनी चाहिए? प्रभु जी बोल रहे 12 चन अंतर भक्ति करनी चाहिए। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि बहुत बार जब हम दूसरों को बोलते हैं कि प्रभु जी आप लोग मंदिर आइए, आप लोग थोड़ा भगवान की भक्ति कीजिए, तो लोगों को लगता है ये तो बहुत मुश्किल है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि भक्ति करना ऐसा है, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट काम है। जैसे यहां पर देखो एक रस्सी के ऊपर आदमी चल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत कठिन कार्य है, हमसे ना हो पाएगा। आप में से कितने लोगों के मित्रों ने ऐसा बोला है, अरे यार ये सब अपने से नहीं होगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया वही भक्ति है, ये सब हम मत बोलो हमको। तो बहुत बार लोग को बहुत कठिन लगता है। तो अभी आपको मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि अभी आप लोग डिवोटी हो या आप लोग धार्मिक व्यक्ति हो, आप लोग आज मंदिर में आए, तो मान लीजिए आज का कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा, आज का ये संडे फिश प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा, और अभी आप अपने घर जाओगे, कोई अम्बिस्ते दोसालपाड़ा, कोई वाड़ा, कोई बम्बई में मीरा रोड, कोई दहीसर, अभी आप आपके जगह पर जाओगे, अभी आप किसी दूसरे को बोलोगे कि देखो आप अगले संडे हमारे मंदिर में आओ। जैसे अगर समझो आपने कोई होटल में खाना खाया तो आपको अच्छा लगा, तो आप बाहर आके क्या बोलेंगे, बहुत क्वालिटी अच्छा है इनका, सर्विस बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा है। तो उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ का आज का प्रोग्राम अच्छा लगा, यहाँ का मंदिर अच्छा लगा, तो हम किसी को बोलेंगे ना। तो सोचिए आप किसी व्यक्ति को मंदिर बुलाते हैं या आप किसी व्यक्ति को भक्ति करने के लिए बोलते हैं तो लोग क्या क्या बहाने देते हैं वो बताइए। सोचिए और अच्छे से उदाहरण दीजिए हाथ उठा के, मैं भक्ति क्यों नहीं कर सकता, why I cannot come to temple और why I cannot do भक्ति, उसके ऊपर लोग क्या क्या जवाब देते हैं अच्छे से सोचिए और बताइए, हाथ उठाइए। हाँ माता जी बोलिए। मुझे टाइम नहीं है, नो टाइम। और कोई? यस। हाँ मुझे मंत्र नहीं आता, मुझे संस्कृत नहीं आता, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है. वेरी गुड. और कुछ बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं, बोलिए. हाँ हाँ, मंदिर में आने से क्या फायदा, क्या मिलेगा? हाँ पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं? बिकॉज टाइम इज मनी. बराबर है कि नहीं? और कुछ? हाँ बहुत लोगों को पता नहीं, इसके लिए नहीं आते. हाँ तो लोग को लगता है कि ये जो है अंधश्रद्धा है. हाँ इसके लिए नहीं जाने का ये मंदिर में. बराबर. हाँ मैं इनके मंदिर में जाऊंगा, इनके मंदिर में नहीं जाऊंगा. यस प्रभु. हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं भगवान सबके दिल में है, मंदिर क्यों? लेकिन दिल में और भी कुछ लोग है ना, जो पिछले महीने लोगों ने मनाया था वैलेंटाइन डे. क्या प्रभु जी, क्या आंसर था आपका? और कुछ? हाँ माता जी बोलिए. क्या नहीं है ये? क्या उम्र है मंदिर जाने की? ये उम्र पे थोड़ी मंदिर जाते हैं. और कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड आंसर. बोलिए. आप बोलेंगे प्रभु जी प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, नहीं तो आप लोग सो जाओगे इसके लिए. बोलिए. एक मिनट एक मिनट. हाँ थोड़ा जोरात बोला तुम्हें. हाँ भक्ति मंदिर, भक्ति क्यों नहीं करना चाहिए? सबके सब सेंटिमेंटल है, हमको सेंटिमेंटल नहीं बनना है. बराबर है, यही बोलना चाहते ना आप. जास्तच भावुक लोग है तिकड़े, कभी पण नाचतात, कभी पण रडतात, कभी पण हरी बोल बोलतात तिकड़े. हाँ बोला. अरे 10 बार नहीं, 1 बार बुला रहे यार आप, ज्यादा ही भक्त लगते रहे. 10 एक ही बार बुला रहे, लेकिन उनको लगता है 1 बार गए तो 10 बार जाना पड़ेगा. हाँ 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 शत्रु के शेड्यूल, षड रिपु. हाँ तुम्हाला प्रश्न कळला मी काय विचारतोय? लोक भक्ती करण्यासाठी काय काय बहाणे देतात ते प्रश्न आहे. हा तर आता या लोकांनी खूप चांगले चांगले उदाहरण दिले, तुमचं पण चांगला उत्तर होता. लोकांना अनर्थ निवृत्ती करायचीच नाहीये असं होऊ शकतं. अजून एक लास्ट, और कोई बोलेगा? येस माताजी. हाँ मंदिर जाएंगे तो बोले पावती, कितने की पावती फाड़ू, दान करो, दक्षिणा करो. आप भी बोलोगे अरे इधर बहुत स्टॉल लगाए भाई, इससे दूर रहना. सबका इंडिविजुअल है, किसको देना है दे सकते, ऐसा नहीं है. अच्छा पॉइंट बताया. और कोई लास्ट पॉइंट आपने बताया यहाँ पे? बाकी यहाँ के लोग थोड़े शांत लग रहे हैं. एक मिनट. हाँ आप बोल रहे हैं. हाँ हाँ वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है. तो दिन भर काम ही करो ना, घर पे क्यों जाते हो? मंदिर भी नहीं जाते तो घर पे भी मत जाओ, ऑफिस में ही रहने का. डब्बा भेज देंगे प्रभु जी. और कुछ? हाँ यस. कोई आवाज पीछे, आवाज हो रहा है. हाँ आज हमारे राजहंस प्रभु बड़े एक्टिव आंसर दे रहे. क्या बोला आपने? जो मंदिर में कौन जाता है? जो पापी है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से पाप दूर होते हैं. तो जो मंदिर में कौन जाता है? पापी लोग हैं. हम तो पाप से मुक्त है, इसके लिए नहीं जाते, हमको जाने की जरूरत ही नहीं है. जैसे डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो बीमार है. हम तो बीमार है ही नहीं. वेरी गुड आंसर. और कुछ लास्ट? हाँ बोलो बोलो. इंग्लिश मीडियम स्कूल के लोग है, बोलो बोलो. हाँ माता जी, टीचर बोलिए, चलो स्टूडेंट नहीं, बोलिए। हाँ माता जी ने सही बताया, माता जी बोल रही है कि ज्यादा हमारे संपर्क में आओगे और हमारे मंदिर में आओगे तो हमारे हेयर स्टाइल हमारे जैसे हो जाएगी। बोल, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बाल भी छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा अच्छा आप लोग ने उदाहरण दिया, तो आइए हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। मैंने एक 10 पॉइंट बनाया है, आप में से मिलता जुलता है। सबसे पहला है नो टाइम। आप में से कितने लोग को ऐसा लगता है कि भगवान के लिए कोई टाइम ही नहीं? कितने लोग को लगता है कि 24 घंटे में से भगवान को एक घंटा भी नहीं दे सकते? कोई है? मतलब दे सकते हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है, मैं इतना बिजी हूं मेरे पास समय ही नहीं। लेकिन लोगों के पास समय है ये सब चीजों के लिए। दूसरा है, स्पिरिचुअलिटी इज मेंट फॉर ओल्ड पीपल, मतलब केवल जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए, जवानों के लिए नहीं। फिर भक्ति इज मेंट फॉर सीरियस पीपल, मतलब भक्ति करेंगे तो ये सब छोड़ना पड़ेगा भाई, ये मेरे से तो नहीं होगा, मुझको तो लाइफ में आनंद लेना है, मजा करना है, तो मैं ये नहीं करूंगा। चौथा, मुझको संस्कृत नहीं आता, किसी ने बोला ये सब वेद पुराण उपनिषद मंत्र अपने को जमेगा नहीं क्योंकि संस्कृत ही नहीं आता। पांचवा है, केवल गिने चुने लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम क्यों उसके पीछे जाएं? क्योंकि दुनिया का रूल क्या है, मेजोरिटी विंस। जो दुनिया भर के लोग हैं वो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, हम क्यों भगवत भक्ति करें? फिर आता है, मुझको केवल लक्ष्मी में इंटरेस्ट है, पैसे में, मुझको पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। तो लोग लक्ष्मी पूजा करेंगे जिससे पैसा आएगा, तो हमको उसमें इंटरेस्ट है। फिर है, ज्यादा भक्ति करेंगे तो साधु बन जाएंगे, ऐसा लोग को डर लगता है। और आधे से ज्यादा लोग को लगता है कि मैं तो ऑलरेडी भक्त हूं, मैं तो खुद ही डिवोटी हूं, मैं तो प्योर डिवोटी हूं। आपको जब भी हम लोग गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम लोगों को मिलते, तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, लोग बोलते हैं हाँ अच्छा है, अच्छा है, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। एक आदमी तो ऐसा बोल रहा था जैसे वो खुद ही भगवान है, बोल रहा था मैं खुशी हो रही हूं कि आप मेरे किताब बांट रहे, ऐसा बोल रहा है। मैं बोला मतलब आपके किताब, मतलब मैं कृष्ण हूं, बोल रहे हो। फिर एक आदमी मिला था, उसको मैंने बोला आपको गीता नहीं चाहिए चलेगा, आप भगवान का नाम लीजिए, तो क्या बोलता है, मेरा तो चालू ही रहता है 24 घंटा, मेरा तो भगवान का नामस्मरण चालू ही रहता है। बोला अच्छा है। फिर आता है, लोग बोलते हैं भक्ति भक्ति छोड़ो, अच्छा आदमी बनो, गरीबों को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यही भक्ति है। किसने बोला मंदिर बनाने के लिए? तो ऐसा एक है। और लास्ट क्या है, भक्ति इतना कंफ्यूजिंग है कि जितना सुनता हूं और कंफ्यूज होता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति बोलता है ये भगवान है, दूसरा बोलता है वो भगवान है, तीसरा बोलता है मैं ही भगवान हूं, चौथा बोलता है भगवान ही नहीं है, तो इसके लिए बहुत तकलीफ है। तो आज हम ये सब टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला है, आई हैव नो टाइम। तो लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। क्या वास्तविक में समय नहीं है? कोई चीज करनी है तो हमको उस चीज को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उस चीज को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, राइट? जैसे नॉर्मल दिन पे एक लड़का एक घंटा पढ़ाई करेगा, स्कूल का होमवर्क करेगा, लेकिन समझो अगले दिन उसकी एग्जाम है तो एक ही घंटा पड़ेगा, दिन भर पड़ेगा, हो सके रात भी पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में भगवान मायने रखते हैं और आपको भक्ति का इंपॉर्टेंस अगर पता चलता है तो क्या होगा, तो आप उसको टाइम देंगे। जब आपको भक्ति का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, भक्ति का वैल्यू पता चलेगा, तो आप उसको इंपॉर्टेंस देंगे। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, लेकिन क्रिकेट देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए बहुत टाइम है लोगों के पास। आजकल न्यूज़पेपर कम से कम 40-50 पेज का आता है और लोग पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते रहते हैं? यहां पे बम ब्लास्ट हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, हाँ इसका एक्सीडेंट हो गया, ये एक्टर का डिवोर्स हो गया, सब नेगेटिव इंफॉर्मेशन हम लेते रहते हैं और फिर सुन सुन के हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। जिंदगी बहुत कठिन हो गई है, लाइफ में बहुत महंगाई बढ़ गई है, हाँ, तो वही चीज पढ़ पढ़ के हम नेगेटिव चले जाते हैं। लेकिन यही समय थोड़ा हम भगवान को दें तो हमारे जीवन में कितनी प्रगति होगी, ये जरूरी है। तो ये श्रद्धा बहुत जरूरी है। फिर दूसरा, कितने लोग को लगता है भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए? कितने लोग को लगता है भक्ति जवानी में करनी चाहिए? कितने लोग को लगता है भक्ति बचपन से करनी चाहिए? जिसने हाथ नहीं उठाया वो बोल रहा है भक्ति करनी नहीं चाहिए। तो बहुत लोग हैं, लोग बोलते हैं कि प्रभु जी ये समय नहीं है, अभी पढ़ाई करो, फिर जॉब, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद शादी करेंगे, फाइल में लाइफ में सेटल हो जाएंगे, फिर जब जीवन में कुछ नहीं बचा तब जाएंगे मंदिर के पास। जब मुंह में दांत नहीं, आंख में दिखता नहीं, कान में सुनाई नहीं देता, तब हम जाएंगे लेक्चर सुनने, ऐसा लोग को लगता है। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता है? जब ही बुढ़ापे में आदमी को सुनाई नहीं देता है तभी क्या वो भगवान के बारे में सुन पाएगा? आदमी में उसकी जो सब इंद्रियां है कम हो जाती है, उसकी याददाश्त कम हो जाती है, क्या वो भगवान के ज्ञान को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। हाँ, तो इसके लिए भक्ति बचपन से करनी चाहिए, एक कम एज से करनी चाहिए। जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं, ये स्कूल में लोग बचपन से क्यों जाते हैं? बुढ़ापे में भी जा सकते हैं, क्योंकि बचपन जो है फाउंडेशन है, जो बचपन में हम पढ़ेंगे वो जीवन भर याद रहेगा। सोचिए स्कूल में हमको जो सिखाया था 2+2=4, 2 2s are 4, 5 1s are 5, जो टेबल्स है, जो मैथ्स है, जो ज्योग्राफी है, जो हिस्ट्री है, वो आज भी हमको याद है, क्योंकि बचपन में ट्रेनिंग करना आसान है और जो सीखा वो जीवन भर याद रहता है। दूसरा, बचपन से कोई चीज सीखा तो आपके पास बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने को। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो व्यक्ति बूढ़ा है उसकी क्या व्याख्या है? बुढ़ापे का डेफिनेशन क्या है, किसी को मालूम है? कौन व्यक्ति बूढ़ा है बताइए। अभी किसी को बोला आप बूढ़े हैं तो बोलेगा अरे मेरे को गाली दे रहा है। आजकल कोई बोलना नहीं चाहता मैं बूढ़ा हूं। एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे एक डिवोटी, तो हमारे इस्कॉन में हम लेडीज को एज ए रिस्पेक्ट मदर्स, मतलब माता जी बोलते हैं। तो डिवोटी एक लड़की आई बुक स्टॉल पे, तो उस डिवोटी ने बोला यस माता जी व्हाट डू यू वांट। तो उस लड़की को लगा इसने मेरे को माँ, मैं क्या तेरी माँ लग रही हूँ क्या, मतलब उसको लग रहा है कि मैं इतनी बूढ़ी लग रही हूँ कि तुमने मेरे को माँ बोला। तो इतनी ऑफेंड हो गई वो चली गई। तो वास्तविक में बुढ़ापा का डेफिनेशन क्या है? फिजिकली वीक मतलब बुढ़ापा, मंद हो गए हो। लेकिन आजकल यंग जनरेशन में भी ये हो रहा है, तो वो बूढ़े हो गए, मतलब 30 साल के व्यक्ति में भी आजकल ऐसा पाया जाता है वो बूढ़ा हो गया। बोलिए, व्हेन इज बॉडी पार्ट स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, तो वो जवानी में नहीं हो सकता। तो कोई बोलता है सफेद बाल आ गए मतलब बूढ़ा हो गया, आजकल तो 25 साल वाले बच्चे को भी सफेद बाल आ गए मतलब बूढ़ा हो गया। वो जिसको दिखाई नहीं देता ठीक से, आजकल मैं देखता हूं 10 साल का बच्चा उसको भी चश्मा है, तो क्या बूढ़ा हो गया वो? तो बुढ़ापे का व्याख्या क्या है? बुढ़ापे का व्याख्या भागवतम कहता है वन हु इज क्लोजर टू डेथ, जो मृत्यु के करीब है वो बुढ़ा है। अभी बताओ आप में से कौन है जिसको मालूम है मृत्यु कब आने वाली है? हाँ, उसका मतलब क्या है? हम सब बूढ़े हैं। और आप मानोगे नहीं, हम हमारे बर्थडे के दिन कोई एज पूछता है तो क्या बोलते हैं? आई एम 14 years old, यंग नहीं बोलते, समझ रहे हैं? तो बुढ़ापे की व्याख्यान क्या है? मृत्यु के जो व्यक्ति करीब है वो बूढ़ा है, और भागवत क्या कहता है, कब मृत्यु आएगी बताए नहीं, इसके लिए बचपन से भक्ति करो। इसके लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरते प्रज्ञो धर्मान भागवताम यहा दुर्लभं मानुषम जन्म तदपि अद्रुवम अर्थदम। वो कहते हैं कि कौमारम 5 साल की उम्र से जब भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत ज्ञान आए तभी से उसको भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जन्म है, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये बहुत ही दुर्लभ है। तो ये है कारण। तो इसके लिए जितना हो सके जल्द से जल्द भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तीसरा, लोग कहते मैं भक्ति क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझको जीवन में मजा करना है। मेरा आप लोग को प्रश्न है कि हम जीवन में जितना चाहिए उतना अगर आपको फैसिलिटी भी मिले, क्या आप उसको एंजॉय कर पाओगे? प्रभु जी, आपका फेवरेट डिश क्या है, फेवरेट स्वीट क्या लगता है आपको? अच्छा, शर्माइए मत, दूंगा नहीं, खाली पूछ रहा हूं। हाँ, स्वीट, स्वीट फ्रूट नहीं, स्वीट मिठाई क्या, आप बताइए प्रभु, आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, आप बताइए। हाँ, देखो प्रभु जी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, आपको लेक्चर के बाद मिलना नहीं, अरे दे रहा हूं आपको गुलाब जामुन, आपको एक दू कि दो, दो नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा पसंद नहीं आपको? प्रभु जी शर्मा रहे, प्रभु जी को लग रहा है एक प्रभु जी थोड़ी देंगे। सोचिए, आपको गुलाब जामुन इतना पसंद है, इतना पसंद है कि आप 10 खा सकते हो, 10 के बाद 11 खा सकते हो, 11 के बाद 12 खा सकते हो, फिर 13 खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। तो इस दुनिया में कितना भी आप आनंद लेना चाहे, लेकिन उसका कुछ लिमिट है। हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कि अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड है, हम 2 गुलाब जामुन खाने के बाद भी उसको नहीं पचा पाते। उसी प्रकार से हम दुनिया में सबसे खूबसूरत से खूबसूरत चीज देखना चाहते हैं, लेकिन कितना देख पाएंगे, लिमिटेशन है। और कुछ चीज हमको अच्छी लगती है, कितना दिन अच्छी लगती है। इसके लिए आईफोन वाले देखिए, हर साल नया आईफोन निकलते, अभी इस साल आईफोन 14 है, फिर आईफोन 15 निकालेंगे, 16 निकालेंगे, और हर साल 50,000 बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है नए चीजों का आनंद है। लेकिन भक्ति की बात ऐसी है कि जब हम भगवान के लिए करते हैं ना, तो हमको भी आनंद मिलता है और भगवान को भी आनंद मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर एक व्यक्ति के पास ड्राइवर हो और एक गाड़ी हो, तो अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और एक मालिक पीछे बैठा है, मालिक बोलता है अभी एसी लगाओ, तो जब भी एसी चालू होता है तो क्या मालिक ड्राइवर को बोलता है, अरे ये एसी केवल मेरे लिए, तुम अभी स्वेटर पहनने का, ऐसा बोलता है? तो जब भी एसी चालू होगा वो ड्राइवर को भी मिलेगा और मालिक को भी मिलेगा। उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमको भी आनंद मिलेगा और भगवान को भी मिलेगा और सबको मिलेगा। भागवतम कहता है यथा मूल तरो निषेचनेन, जैसे हम पेड़ के जड़ों में पानी डालोगे तो क्या होगा, सभी पार्ट को पानी मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करोगे तो सबको आनंद मिलेगा। ठीक है, तो खुद आनंद लेने में आनंद नहीं है, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो सबकी सेवा है। फिर चौथा है संस्कृत। आप में से कितने लोग को संस्कृत आता है? जिनको नहीं आता है घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान ने गीता के किसी भी श्लोक में नहीं लिखा संस्कृतम ही जानामि, भगवान ने ऐसा नहीं लिखा जो संस्कृत जिसको आता है वही मेरा प्रिय भक्त है, या जो संस्कृत पढ़ा है वही बैक टू गॉड जाएगा, ऐसा किधर भी नहीं लिखा। तो डरिए मत, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, संस्कृत के श्लोकों को समझना और उसके अर्थ को समझना। केवल श्लोक बाय हार्ट करने से कोई फायदा नहीं, हाँ, लेकिन हमको उसका अर्थ जानना चाहिए। इसके लिए प्रभुपाद ने भगवद गीता और भागवतम को ट्रांसलेट किया, उसके ऊपर टिप्पणी लिखी, उसके ऊपर भावार्थ लिखा, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन हो। फिर आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, लोग बोलेंगे केवल गिने चुने लोग भगवान की भक्ति करते हैं, हम क्यों करें? तो उदाहरण के तौर पर, केवल गिने चुने लोग क्रिकेट टीम में होते हैं, और गिने चुने लोगों में से जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें से कोई आदमी मास्टर ब्लास्टर सचिन बन सकता है या विराट कोहली बन सकता है, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में क्रिकेट खेलते हैं बच्चे। केवल क्रिकेट नहीं खेलते, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं ताकि एक दिन वो बड़ा क्रिकेटर बन सके। उसी प्रकार से स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, उसी प्रकार से आईआईटी मेडिकल के लिए तैयारी करते हैं। तो हर कोई व्यक्ति बोलता कि बहुत कम सीटें हैं उसके लिए हमको पढ़ाई नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको जिस जब उसकी वैल्यू मालूम होती है तब हम उसके ऊपर मेहनत करते हैं। नहीं तो आजकल क्या होता है, आजकल हमारा मेंटालिटी है भेड़ों का। भेड़ क्या करता है, केवल फॉलो करता है, उसको मालूम नहीं कहाँ जाना है क्या करना है। आजकल लोग क्या करते हैं, शीप मेंटालिटी है, लोगों को क्या करना है वो नहीं मालूम। हाँ ये ऐसा कर रहा है, हमको ऐसा करना चाहिए। सब लोग यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, हमको भी यूट्यूब चैनल बनाना है। सबको इंस्टाग्राम रील बनाना है, हमको भी बनाना है। लेकिन वास्तविक में हम क्यों कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया उसका अस्तित्व क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, और उससे क्या वास्तविक प्राप्त होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और उदाहरण के तौर पर जैसे यहां पर देखो, हीरो का आपको हार दिख रहा है। ज्यादा भीड़ आपको कहां मिलेगी, सब्जी मंडी में ज्यादा भीड़ मिलेगी कि जो हीरो के ज्वेलरी में ज्यादा भीड़ मिलेगी, सब्जी मंडी में। क्यों? एक तो है वो बेसिक नीड है, दूसरा क्या है, वो सस्ता है। लेकिन जौहरी के पास कौन जाएगा, जिसको उसकी वैल्यू मालूम है और जिसके पास पैसा है वही जाएगा। उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति का वैल्यू जानेगा वही भक्ति में आएगा। इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति करता है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर पड़ने की बात कर रहा है। वो वापस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के चक्कर से बाहर आना चाहता है, इसके लिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। हाँ भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त सबसे चतुर है। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत रूप से आनंद प्राप्त करना चाहता है, वो टेम्पररी आनंद नहीं चाहता, वो शाश्वत रूप से आनंद चाहता है। फिर किसी ने कहा मुझको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, मुझको केवल लक्ष्मी में इंटरेस्ट है, मुझको केवल पैसा चाहिए। अभी पैसा तो सबको चाहिए, मंदिर को भी चाहिए, घर चलाने के लिए चाहिए, लेकिन वास्तविक में जब हम पैसे की बात करते हैं, क्या पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं? हाँ, आप में से बहुत सारे लोग आजकल शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पे लिखा रहता है 50% सेल, 50% डिस्काउंट। आप में से कितने लोगों ने खरीदा है 1 किलो सुख 1 किलो शांति? क्या आप सुख शांति खरीद सकते हैं? नहीं। तो कितना भी पैसा हो आप सुख और शांति को खरीद नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास जितना हो उसमें अगर आप संतुष्ट हो गए तो सुख शांति खुद आपके पास आ जाएगी। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अंदर से संतुष्ट बनने का प्रयास कीजिए, और जो भी मिलता है ऐसे सोचिए भगवान ने मुझको दिया, मैं उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करूंगा। और जो आईफोन या एप्पल के मालिक जिसने फाउंडर है उनका नाम था स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स ने कहा था हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट। जो आदमी दुनिया भर को आईफोन आईपैड आईपॉड बेच बेच के इतने अरबों अरबों का पैसे कमा चुका है, वो क्या बताया उसने, हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट। और हमको लगता है कि आईफोन 14 आ जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। फिर आता है कोई बोलेगा अरे ज्यादा मंदिर जाऊंगा तो मैं साधु बन जाऊंगा, मेरी ये हेयर स्टाइल ऐसे हो जाएगी, हाँ या मुझको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप ये बताइए भगवद गीता के सबसे पहले स्टूडेंट कौन था? अरे यार ये भी याद बदलाना पड़ेगा आपको, कौन? जोर से बोलो। तो अर्जुन ने क्या आश्रम ज्वाइन कर दिया, हमारे जैसे सैफरन पहन के बाल उड़ा दिया था उसने? इनफैक्ट वो साधु बनना चाहता था। अगर आपने गीता पढ़ा हो तो गीता के पहले अध्याय में वो भगवान को बोल रहा है कि भगवान बस करो मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं सब छोड़ना चाहता हूं, मैं जाऊंगा, मैं क्या बोलते हैं उसको, जंगल में जाऊंगा, खुश रहूंगा। भगवान बोलते नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुमको अपना कर्तव्य करना चाहिए और अधर्म के प्रति लड़ना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, और जो गीता का पहला स्टूडेंट है उसने सब कुछ छोड़ के नहीं किया। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सब कुछ मत छोड़ो, जो कर रहे हो वो करो, लेकिन कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ो। तो वास्तविक में कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि साधु बनिए। हाँ, अलग अलग प्रकार के आश्रम है, कोई है ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, कोई है गृहस्थ आश्रम में रहता है, कोई वानप्रस्थ आश्रम में, कोई संन्यास आश्रम में, लेकिन सबको करना क्या है, भक्ति करना है और भगवत भक्ति करके अपना जीवन सफल करना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महाराज, जैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़े और वो भी भक्ति करते थे। तो आपको भी ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना है आपको, आपको आपके जीवन में केवल भगवान को जोड़ना है। और वास्तविक में साधु कौन है, भागवत उसकी व्याख्या देता है, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुवः शांतः साधुवा साधु भूषणम। साधु कौन है, जिसके पास आभूषण है, सोने के नहीं, ये गुणों के, कौन से गुण, तितिक्षव, जो बहुत ही टॉलरेंट है, जो करुणा है वो जिसके पास, जो सबका बेस्ट फ्रेंड है, जब सबका वेल विशर है और उसके जीवन में कोई शत्रु ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति साधु है। कोई कपड़े पहनने से साधु नहीं होता, अगर किसी ने सैफरन कपड़े पहने हैं तो उसको लगता है वो साधु है, तो साधु नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो जेल में प्रिजनर है वो भी सैफरन कलर पहनते हैं। तो ये ध्यान रखिए। फिर कोई बोलता है अरे मैं ऑलरेडी अच्छा हूं, मैं तो ऑलरेडी भक्त हूं, सब कुछ अच्छा करो, लेकिन वास्तविक में आप ऑलरेडी भक्ति कर रहे हो, लेकिन किसके लिए, अपने जीवन को इवैल्यूएट करो, क्या मैं कर रहा हूं और अच्छा कर सकता हूं, हाँ? क्या मैं और कुछ कर सकता हूं। फिर कोई बोलता है मुझको कि मुझको भक्ति भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझको तो एक अच्छा आदमी बनना है, लेकिन अच्छा आदमी किसके लिए बनना है, किसके नजर में बनना है, भगवान की नजर में, हाँ, सोसाइटी की नजर में या दूसरों की नजर में। तो ये यहां पर बताया गया है। और लास्ट कोई बहता है कि मैं भक्ति क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी व्याख्या देता है, लेकिन वास्तविक में कोई भी चीज कंफ्यूजिंग होती है तो हम क्या छोड़ देते हैं। आप लोग को बचपन में कितने लोग को मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, एटलीस्ट मेरा तो था, तो आपने मैथ्स छोड़ दिया, नहीं समझे तो दो क्लास लगाए लेकिन सीखे ना। उसी प्रकार से भक्ति में कंफ्यूजन भक्ति में नहीं है, जो अनऑथोराइज्ड टीचर्स हैं उन्होंने कंफ्यूजन किया है। भक्ति का मार्ग क्लियर है, भगवान, भक्त और भक्ति, ये तीन मार्ग है, लेकिन कभी कभी हम उसको ध्यान से समझते नहीं, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो अंत में उदाहरण क्या है कि भक्ति सरल है, और भक्ति को करने के लिए आपको एक टीचर की जरूरत है, और जो एक्सपर्ट टीचर और गुरु हो उनके मार्गदर्शन से हम आगे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर है इसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद, जिनके मार्गदर्शन से इस्कॉन की स्थापना हुई और आज विश्व भर में करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है और उन्होंने अपने जीवन को सफल किया है। तो समय बहुत कम है, तो इसके लिए आप लोग भक्ति कीजिए। और भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है, ये ABCD फॉर्मूला, ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग। इसी प्रकार से दर रविवार को आइए कार्यक्रम में, भक्तों का संग लीजिए, भक्तों से आदान प्रदान कीजिए, भगवान के बारे में प्रश्न पूछिए, बी फॉर बुक्स, गीता भागवतम प्रवचन सुनिए, सी फॉर चैंटिंग, जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और डी फॉर डाइट, कृष्ण प्रसाद। तो ये सब कीजिए, आपका जीवन परिवर्तन हो गया। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी भगवान की महाआरती है, आप लोग खड़े हो जाइए और आरती में भाग लीजिए। पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट्स है।
आनंद राघव प्रभु, खूब खूब आभार, आपने प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी पर बहुत सुंदर तरीके हम सबको मार्गदर्शन दिया। अब आधे घंटे के लिए भगवान के सामने कीर्तन के साथ आरती होगी। उसके बाद 12:30 बजे जो भक्त लोग प्रवचन में आज पहली बार इस मंदिर में आए हैं उनके लिए एक छोटा उपहार होगा, और इस जो गोवर्धन इको विलेज है उसके बारे में एक संक्षिप्त में कुछ बताया जाएगा। उसके बाद में सभी लोगों को लिए प्रसाद है, आप कूपन लेके प्रसाद की जगह पर वहाँ पर 12:30 बजे के बाद में प्रस्थान ले सकते हैं। हरे कृष्णा।